अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा तो सीकर के भक्त बहुत तेजी के साथ आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। माथे पे तिलक लगा हुआ है, इसका मतलब भगवान के चरण हमने माथे के ऊपर धारण किए हैं, और भगवान के चरण माथे के ऊपर धारण किए इसका मतलब भगवान हमारे रक्षा कर रहे हैं। हमने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है। ये स्टैम्प है, स्टैम्प जैसे होती है, पासपोर्ट में स्टैम्प लगती है, तो आदमी को जिस देश की स्टैम्प होती है उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये स्टैम्प लगनी है का मतलब भगवान के भक्त हैं, और कभी भी भगवान के पास, भगवान के मंदिर में कहीं भी जाने में, भगवान के धाम जाने में कोई रुकावट नहीं। तुलसी की माला गले में, और भगवान का ये ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, ये बहुत पहचान है। जैसे सिपाही होगा पुलिस का, उसकी अपनी पहचान होती है, वर्दी में खड़ा है तो आप पहचान लेंगे, ट्रैफिक वाला है तो उसको पहचान लेंगे, डॉक्टर की अपनी वर्दी होती है, वाइट कोट है, गले में स्टेथोस्कोप है तो ये डॉक्टर है, तो उसका सम्मान अपने आप लोग करेंगे। वकील है, काला कोट पहना हुआ है तो वकील है, और ये वेशभूषा है तो कहेंगे ये भगवान का आदमी है, विष्णु का दूत है, तो ये है विष्णु का दूत हो गया इसका मतलब। तो एकदम उसकी पहचान हो जाएगी कि ये भगवान का आदमी, वो सरकार का आदमी जैसे है तो ये भगवान का आदमी पहचान था। तो इसमें गौरव होना चाहिए अपनी पहचान, और अपने बड़े बुजुर्गों के पुराने चित्र देखो, अथवा भगवान के अथवा देवताओं के चित्र देखो, तब भी सबको ऐसे लगा हुआ मिलेगा तिलक। तो अगर हम लगाते हैं तो हम तो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें गौरव होना चाहिए। और वेशभूषा अपनी, अगर हम अपनी संस्कृति को और उस वेशभूषा को अपनाएं तो ये, और ये हमारा जो है, हम अपनी असलियत को वापस ला रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने स्वरूप में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम अपनी पहचान को भूल गए हैं, हम अपनी वापस पहचानने में आने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा ये अनुभव करके कि साधारण वेश में बाहर जाते हैं, और जब ये इस वेशभूषा में जाते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें हमारा आत्मा जो विश्वास होता है और जो आत्मबल होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। इस वेश में तो बड़े से बड़ा ऑफिसर भी आके झुक के राम राम करेगा, इस पेशा में कहीं जाएंगे तो उसको तो सामान्य आदमी की श्रेणी में गना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपनी पहचान है, और सीधा सा भगवान के आदमी है उसमें गिनती हो जाएगी, और जो इसको देखेगा उसका भी भला होगा, उसके दर्शन करने से उसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवद गीता के नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। राज विद्या का मतलब सब विद्याओं का राजा, विद्या का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान विद्या में आता है। तो एक विद्या होती है जड़ पदार्थों की विद्या, जो संसार में कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जाती है, वो असल में अविद्या है, क्योंकि वो माया और माया से बनी हुई चीज़ों के विषय में सब कुछ जानकारी देती है। और जो विद्याओं का राजा है वह आध्यात्मिक विद्या, आत्मा की विद्या, परमात्मा की विद्या, दोनों का आपस में संबंध क्या है, ये विद्या जो है इसको बोलते हैं राज विद्या, सब विद्याओं का राजा। लेकिन राज विद्या में भी राज गुह्यम, इसको ये कहते हैं सबसे गुप्त चीज, रहस्य जो सबको नहीं बताया जाए। तो वो क्या रहस्य है जो सारी विद्याओं का राजा है और जो सारे रहस्यों में भी परम रहस्य, रहस्य श्रोमणि या राज गुह्यम है? क्या है वो? वो है नवे अध्याय का अंतिम श्लोक, इसको बोलते हैं गुह्यतम ज्ञान। गुह्य ज्ञान है आत्मा और शरीर को अलग जानना। दूसरे अध्याय में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको बोलते हैं घर को घर के मालिक को पहचानना अलग करके, खेत को क्षेत्रज्ञ को जानना, ये गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान, जैसे गुड बेटर, गुह्यतर ज्ञान है सातवें अध्याय में, भाई प्रकृति आठ चीजों की बनी हुई है, आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार अष्टधा प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति अष्ट आठ चीजों की बनी हुई है, ये नीचे की प्रकृति है, इससे ऊपर परा, इससे ऊपर की प्रकृति है जीव भूतम, ये जीव, ये इससे ऊपर की प्रकृति जीव है, और ये दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तो ये गुह्यतर ज्ञान है। और फिर भगवान का सातवें अध्याय में विशेष रूप से बहुनाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यंती, ज्ञान क्या है ये सब वर्णन उसमें आगे आएगा। गुह्यतम ज्ञान, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट ज्ञान क्या है? तो गुड हो गया, बेटर हो गया, अब बेस्ट गुह्यतम ज्ञान वो है मन मना भाव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कार। ये जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है जो फिर 18वें अध्याय में आएगा 65वां श्लोक बनके, तब भी यही श्लोक ऐसे का ऐसे, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, उसमें भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, और यहां कहते हैं ये सत्य है, और वहां प्रतिज्ञा शब्द कहेंगे, बस श्लोक एक ही है। तो ये श्लोक दो बार आया है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने चार सूत्री प्रोग्राम दिया है, और चार सूत्री प्रोग्राम को गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। गुह्यतम ज्ञान, मेरे भक्त बनो, भक्त बनो का मतलब है मुझसे प्रेम करो, तो गुह्यतम ज्ञान है प्रेम, जो किसी को बताया नहीं जाता है। प्रेम ऐसी चीज है जो अपने दिल में छुपा के रखी जाती है। तो जीव का भगवान से प्रेम हो जाए, कृष्ण प्रेम ही गुह्यतम ज्ञान है। प्रेम जो है, प्रेम भक्ति का मतलब है प्रेम, भक्ति के अंदर शब्द आता है प्रेममयी सेवा, भक्ति की परिभाषा है प्रेममयी सेवा, जीव भगवान की प्रेममयी सेवा करे उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति हृदय का धर्म है, ज्ञान मन का धर्म है, ज्ञान अकुल का धर्म है, और भक्ति दिल का धर्म है, और दिल से प्रेम होता है, माथे से प्रेम नहीं होता है, माथे से जानकारी होती है। तो ये गुह्यत, और भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, और कैसे भक्त बनो? मन मना, मन मना का अर्थ है तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है मेरे मन की बात को समझ के वैसे ही करो, ये भी मन मना का अर्थ है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी करो, ये मन मना, मेरे मन की बात को समझो और वैसे करो। तो कौन मन मना की श्रेणी में आता है? भगवान किसको मन मना कहते हैं अपने ओर से? गोपियों, गोपियों के लिए जब उद्धव को संदेश दे के भेजते हैं मथुरा से, तब कहते हैं मद मनस्का, मन मनस्का, मद अर्थ त्यक्त जीविता, उनका मन उनने अपने पास रखा ही नहीं है, मेरे को दे दिया, वही मन मना है। भगवान अपने मुख से मन मना गोपियों को मानते हैं, इसलिए उद्धव गोपियों को कहते तुम मन भगवान में लगा, बोलते मन तो एक ही था, वो तो गए हमने कृष्ण को दे दिया, दूसरे कहां से लाए, दूसरा है ही नहीं तो लाए कहां से, लगाए तो लगाए क्या? तो मन मना की परिभाषा गोपियों की तरह भगवान श्रृंगार क्यों करती है गोपी? क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूं इसलिए नहीं करती, मेरे लिए नहीं, कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए करती। तो कृष्ण भगवान के, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए काम, उसको बोलते हैं भगवान के मन मना। इसको फिर चतुर्श्लोकी में मच्चित्ता भी कहा है, मन मना की दूसरी परिभाषा मच्चित्ता, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ हो अथवा जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता हो, जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता हो। ऐसा भगवान, ऐसा हनुमान जी भगवान के ऐसे दिव्य भक्त हैं जिसने अपने छाती को खोल के और सीताराम को अंदर दिखाया था। इसको बोलते हैं मन मना, इसको बोलते हैं मचित्ता। जो छाती खोले तो अंदर सीताराम दिखे, ये हनुमान की परिभाषा है। इसको बोलते हैं मन मना, कि उसके मन के अंदर ढूंढोगे तो और कुछ मिलेगा नहीं। एक गर्म दूध के नाम से कथा है गर्ग संहिता में, 100 साल के जुदाई के बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ बिंदु सरोवर, जो सिद्ध आश्रम के नाम से बिंदु सरोवर सिद्धपुर इस वक्त गुजरात में है, पालनपुर से 15 किलोमीटर दूर सिद्धपुर उसका नाम है। ऊंजा सिद्धपुर, वहाँ का जीरा बहुत मशहूर है, उधर जीरा उस क्षेत्र जीरे का क्षेत्र है, वहाँ एक बिंदु सरोवर है। वो बिंदु सरोवर की कथा सुनते हुए गोपी कोई कथा बता रही थी कि एक बार बिंदु सरोवर में कोई नहा ले तो उसका कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होगा, कृष्ण से जुदा कभी नहीं होगी। तो राजा राम ने बोला दोबारा इसको दोबारा पढ़ो। तो जब उसने दोबारा पढ़ा तो राजा ने कहा अभी सब लोग यहाँ से तैयार हो, चलते हैं बिंदु सरोवर स्नान करने। तो वो गोपियाँ सब वृंदावन से बिंदु सरोवर में नहाने के लिए आई। बिंदु सरोवर इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के आंखों से कर्दम मुनि की तपस्या देखकर आंसू गिरे, और आंसुओं से वो सरोवर बना, इसलिए उसका नाम है बिंदु सरोवर। और वहाँ कपिल देव का जन्म और देवहूति माता वहाँ रही और अनुसुईया का जन्म वहाँ हुआ था। वो कभी आपका भाग्य से जाना हो ऐसे गुजरात की तरफ तो पालनपुर से आगे वो स्थान है, छोटा सा सरोवर अभी बना हुआ है, नहाया जा सकता है उसमें। और पास में कपिल देव के जन्म स्थान करके लिखा है, मंदिर बना हुआ है। उस वक्त जैसे ही गोपियां वहां पहुंची है तो यहां से द्वारका से सारी रानियों के साथ, रुक्मणी आदि, सत्यभामा, कालिंदी आदि के साथ, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ वहीं आए हैं। और कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, चारों ओर से सख्त पहरा देके राधा रानी नहा रही है बिंदु सरोवर में। और ये बहुत बड़े यदुवंशियों को अंदर नहीं जाने दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको आज तक किसी ने रोका नहीं है, कौन रोक सकता है। और तब कृष्ण का इस वक्त वृषभानु नंदिनी राधिका स्नान कर रही है। सत्यभामा ने कहा ऐसा क्या है, राधा का नाम तो उन्होंने पहले ही सुना हुआ था कृष्ण का, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐसे कहा कि हम सब आपकी सेवा करती हैं, जो भी हो। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने संदेश भेजा राधा को कि कृष्ण मिलना चाहते हैं। अभी राधा नहा ही रही है बिंदु सरोवर में, तब तक संदेश आया कि कृष्ण मिलना चाहते हैं। तो ये महत्व बिंदु सरोवर का सार्थक हुआ कि जो एक बार इसमें नहाए वो कृष्ण से मिलता है और कभी नहीं जुदा होता है। राधा कृष्ण के पास गई तो बहुत सुंदर रत्न की वेदी तैयार की, उसके ऊपर कृष्ण को बिठाया, और रानियां देखती रह गई कि ऐसा तो द्वारका में वैभव नहीं है जिस वैभव से ये पूजा कर रही है। और तब राधा ने सब रानियों को कहा चांद तो एक है लेकिन उसको प्रेम करने वाले बहुत हैं, ऐसे कृष्ण तो एक है, हम सब उसको चाहने वाले हैं, ऐसे करके सबको सामान्य शांत करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर वर्णन है। और रात को कृष्ण जैसे ही अपने शिविर में सो रहे थे तो रुक्मणी जी उनको वापस आई, तो कृष्ण जाग रहे हैं, सोए नहीं है। तो रुक्मणी पूछती आप जाग क्यों रहे हैं, अभी तक आपको सोना चाहिए था। बोला राजा रानी अभी तक सोई नहीं है, और वो रात को दूध पीती है गर्म तब सोती है गाय का, तो आपने उनकी सेवा तो बहुत अच्छी की है लेकिन दूध नहीं दिया। रुक्मणी जल्दी से गई और गाय का सुंदर दूध, और कोई द्वारकाधीश के रानियों के लिए कमी तो थी नहीं, तो चांदी का सोने का बर्तन और अच्छी तरह से दूध दिया राजा रानी को। फिर वापस आके भगवान के चरणों का चरण का संवाहन करने के लिए राजा रानी ने हाथ लगाया तो कृष्ण के चरण में फफूंदे पड़े, जल गए हैं। तो राजा रानी आश्चर्य से, रुक्मणी पूछती आप कहीं बाहर गए नहीं, आपके चरण जल कैसे गए। तो भगवान ने कहा आपने दूध जो राजा रानी को दिया वो बहुत जल्दी में दिया, बहुत गर्म था, और उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं और ये चरण उसके कारण चले हैं। तो गर्म दूध की कहानी कहते हैं इसको, कि भगवान कि चरण सदा जिसके हृदय में रहे वो मन मना है, अथवा भगवान का स्वरूप जिसके हृदय में बसा हुआ है उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, वही दिखता है। जहाँ देखे, जैसे मीरा कहती थी कि जहाँ दिखता है उसको शाम ही दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, ये मन मना की परिभाषा है। तो ये राज विद्या राज गोयम का परिभाषा है। तो इस नवे अध्याय में विशेष रूप से आठवें अध्याय में और नवे अध्याय में थोड़ा थोड़ा सा सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि को कहे, सृष्टि का सर्ग कहते हैं। सर्ग का मतलब सृष्टि करना। एक सर्ग होती है, एक विसर्ग होता है। सर्ग जो होता है वो विष्णु के द्वारा होता है और विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। तो ये सृष्टि दो प्रकार की होती है। एक सृष्टि ऐसी है जैसे भगवान विष्णु सारी सामग्री दे देता है जिससे सृष्टि बननी है, 24 तत्व महातत्व दे, जीव जीवों के कर्म ये सब देता है। ब्रह्मा जी बैठ के उसमें से 84 लाख जूनियर उसके अलग अलग पुरुष बना व्यक्ति बनाते हैं, जीव जंतु वो बनाते रहते हैं। तो उसको विसर्ग बोलते हैं, विशेष सर्ग जिसमें आकृति प्रकृति रूप अलग बनते हैं, ये ब्रह्मा जी का काम। लेकिन पहला सृष्टि जो करना है वो भगवान विष्णु का काम है। तो इसका थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन आठवें और नवें अध्याय में है। दिखता नहीं है लेकिन है इसके अंदर। जैसे इसमें भगवान कहेंगे सर्वमूर्तिषु कौन्तेय, आगे कहेंगे जितनी मूर्तियां होती हैं ये सब कैसे बनती है, प्रकृति क्या कर कैसे देती है। तो ये सब वर्णन करके फिर आगे वेदों का वर्णन आता है इस नवे अध्याय में। भाई वेद क्या करते हैं, बोला वेद तीनों गुणों के अंतर्गत शिक्षा देते हैं। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर आओ क्योंकि मैं निर्गुण हूँ, तीनों गुणों से ऊपर हूँ। निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के तीनों गुणों से परे। भगवान तीनों गुणों से परे है और वेद प्राय तीनों गुणों के अंतर्गत ही शिक्षा देते हैं। तो इसलिए यहाँ जो श्लोक है, तेतन भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जो बहुत बड़ा वेदों का यज्ञ करके क्या करेगा, स्वर्गलोक में जाएगा। तो स्वर्गलोक में जाएगा, जैसे उनके पुण्य क्षीण होंगे तो वापस मृत्यु लोक में आ जाएगा और फिर मृत्यु लोक में आएगा, फिर यहां से पुण्य करेगा, फिर स्वर्ग लोक में जाएगा। गतागतम काम कामा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा। तो अर्जुन ने पूछा ये तो फिर सब लोग तो यही काम कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, पूजाओं में लगे हुए हैं, तो ये कहां जाएंगे। बोला सब स्वर्ग में जाएंगे, सुख भोगेंगे और फिर वहां से वापस आएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए भाई, क्यों करते हैं ऐसे। तो भाई उनको कुछ चाहिए इसलिए करते हैं, पूजा करते हैं यज्ञ करते हैं तो कुछ चाहिए उनको, कोई कमी होगी तब करते होंगे, और या तो कुछ है उसकी रक्षा के लिए करते होंगे। भाई आखिर क्यों करते हैं पूजा, आप जाके किसी से पूछ लो कि मंदिर में जाते हैं तो काय के लिए जाते हैं, आपको दो ही कारण मिलेंगे, या तो कुछ मांगने जाते हैं कुछ नहीं है वो भगवान दे दे, या कहेंगे जो है उसकी रक्षा करो, भाई ये बीमार हो गया इसको बचा दो, यही चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। आप जितने भी धर्म के जो अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, करो, कोई मंदिर जाए पूजा करें, उसके पीछे उद्देश्य तो ये दो ही है ना,
बिल्कुल दो ही है।
क्यों जी, विचार करके दो भाई, कुछ या तो हमको चाहिए और या जो हमारे पास है वो हम बना रहे। तो अर्जुन ने कहा ये इस काम के लिए जाते हैं। बोला ये तो होता नहीं है, मिलता स्वर्ग है और फिर वहां से वापस आना पड़ता है। स्वर्ग में जाना ऐसे है जैसे 2-5 लाख रुपए यहां से लेके अमेरिका घूमने जाना, पैसा पूरा हुआ वीजा पूरी वापस आना पड़ेगा, वहां तो रुक नहीं सकते। तो ये तो ऐसा है कि पैसा जितना कमाया आपने जो भी वो पूरा हो गया फिर वापस आ गया। तब भगवान ने अर्जुन के ऐसे भाव को देखा कि अर्जुन इससे संतुष्ट नहीं है, तब एक श्लोक कहा, बहुत बड़ा अद्भुत श्लोक भगवान ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपाशते तेषां नित्यवियुक्ताना योगक्षेमं वहामि। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य का अर्थ न अन्य, न अन्य और नहीं, और किसी का नहीं, केवल मेरा चिंतन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान ने अर्जुन को कहा होगा तब पहले अर्जुन के पीठ के ऊपर ऐसे मारा, अनन्यस और किसी का नहीं, अनन्यस चिंतयन्तो मां और किसी का नहीं, मेरा चिंतन जो करता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये जनहा जो भी, कौन ब्राह्मण करता है सन्यासी करता है? नहीं, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी, ये जना का मतलब कोई भी प्राणी, इसको भागवत धर्म कहते। मनु महाराज के दिए हुए धर्म को मानव धर्म कहते, वो तो मानवता सिखाता है, लेकिन भगवान के धर्म को भागवत धर्म कहते जो सब प्राणियों के लिए है। जैसे राम जी के लीला के अंदर जो गीध राज है जटायु, उसको भगवान राम गोद में बिठाते हैं और अपने पिता दशरथ के समान उसका श्राद्ध तर्पण करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, किसी गीध की कोई क्रिया तो नहीं करता है, ये भागवत धर्म। और पहला मित्र भगवान ने कोई है जो निषाद को बनाया, निषाद का मतलब पापी। निषाद की उत्पत्ति महाराज वेण के अधोभाग के मंथन से हुई थी, सारा पाप काले कलूटे आदमी के रूप में हुआ था, जिसका काम चोरी डाका डालना, उसको निषाद बोलते, वह शब्द है निषाद। तो उसको भगवान ने गले लगाया, और भगवत गीता में भगवान यही कहेंगे स्त्रियों वैशा शूद्र पाप योनि, ये सब इसी नवे अध्याय में आएगा। पाप योनि, पुराने कर्मों के कारण कोई पापी के घर में जन्म लिया हो, अथवा इस जन्म में कोई स्त्री हो, कोई भी हो, एक बार मेरा भजन कर लेता है तो वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई रुकावट, ये जना का अर्थ नहीं। कोई भी परिउपासते, एक होता है उपासते, उपासते, उपासते का मतलब मेरे पास आके बैठे, उप का मतलब ऊपर, आस्ते का मतलब बैठे, मतलब भगवान कहता है जो मेरे पास आके बैठे। जो पूजा करेगा तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा ना भाई, मंदिर में जाओगे, और प्रायः देखो पूजा जिसकी होती है उसको तो अंदर बुला के जाके बिठाते हैं ना अंदर, कि भाई भगवान के सामने बैठाते उसको उपास, लेकिन काय के लिए पूजा करते हैं। तब यहां कहते हैं परिउपासते, आता है मेरे पास लेकिन परम की प्राप्ति के लिए, संसार के लिए नहीं, दुनिया की बात नहीं मांगता है, परे उपासना, परे आगे लगाया उपासना के, वैसे उपासना वेदों में उपासना है और यहां परि उपासना है। परि उपासना का मतलब जैसे जैसे चौथे अध्याय में आते हैं ना, तद विधि प्रणी पाते ना परिप्रश्ने, गुरु जी के चरणों में जाओ और जाके दंडवत करो और बैठ जाओ, परिपर प्रणी पाते न, पाते न का मतलब पातेन कहते हैं गिरने को कहते हैं, प्रणी प्रणाम करके उधर ही बैठ जाओ, बैठो, क्या करें बैठ के, परिप्रश्ने न, बैठ के पूछो, प्रश्नन शब्द नहीं है, परिप्रश्ने न, वही है परिउपासते वाला परि, परलोक का, अपने जन्म सुधारने का, भगवान की प्राप्ति का, भगवान कौन है, उसको कैसे पाए, ऐसे प्रश्न पूछो, ये मत पूछो कि दुनिया में हमारा धंधा काम कैसे चलेगा, वो तो जैसे भाग का है वैसे चलेगा, लेकिन वो पूछो परिउपासते, यहां है परिउपासते, ये जना परिउपासते, अनन्यास चिंतयन तमाम, ये जना परिउपासते, आपकी उपासना करें, आपको पाने के लिए करें और किसी की नहीं करें, तो फिर कुछ उनके पास मिलेगा कैसे उनको। तब भगवान ने कहा योग क्षेमम वहामि अहम्, उसकी कमी को मैं पूरी करूंगा और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। अब ये दो काम के लिए हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां से हमको इस संसार का सुख अथवा स्वर्ग आदि मिलता है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं उसके योग क्षेम का बहन मैं स्वयं करता हूं। और इसमें वाहन शब्द, वहामी शब्द जो है वो वहामी शब्द से हिंदी में वाहन शब्द है, वाहन गाड़ी को बोलते हैं, मतलब ढोना, इसका मतलब उसकी कमी को जो नहीं है मैं ढो के लाता हूं। एक अर्जुन आचार्य नाम का बहुत बड़ा विद्वान था, महाभारत के ऊपर टीका लिख रहा था, भगवद गीता के जब इस श्लोक के ऊपर पहुंचा तो वहामी शब्द के ऊपर उसको संदेह हुआ कि भगवान कंधे के ऊपर थोड़ी उठाएंगे, वहामी का मतलब कंधे के ऊपर उठा के लाना, अरे भाई ददानी होना चाहिए, देते हैं भगवान किसी के हाथ से दिला देते हैं, भाई भगवान को दिलाना है तो किसी के हाथ से दिला ही देते हैं, इस दुनिया में किसी का काम होता है किसी के हाथ से होता है। तो उसने लाल कलम लेकर और ददामी शब्द के ऊपर लकीर लगाई, हड़ताल लगाई, और ये कहीं गलती है प्रिंट की। ब्राह्मण था, भिक्षा लेने के लिए गया, नहाने गया नदी पे, फिर भिक्षा लेने गया और भिक्षा मिली नहीं, देर हो गई, घर लौटा नहीं। ब्राह्मण को 5 घरों में मांगने का अधिकार है, नहीं मिले तो फिर उस दिन व्रत रखना चाहिए, और पे एक में मिल जाए तो ठीक है, एक में पूरा नहीं हो तो पांच घरों का ले ले, उसको मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी का मतलब मधुमक्खी की तरह इधर उधर से थोड़ा थोड़ा कटा कर, तो उसमें उसको दोष नहीं लगता। तो ब्राह्मण तो नहीं आया, लेकिन ब्राह्मणी घर में थी तो एक छोटा सा सुंदर सांवला सा बालक, कंधे के ऊपर लाठी, लाठी के में दो टोकरियां, दो टोकरियों में दाल चावल घी दही दूध जो आवश्यकता होती है घर की वो उठा के लाया, दरवाजा खटखटाया, पंडितानी ने दरवाजा खोला, बच्चे ने सामान रखा, बोला पंडित जी ने ये सब सामग्री भेजी है। पंडितानी आश्चर्य में देख रही है, बच्चा बहुत सुंदर है, लेकिन बच्चा जैसे झुक के टोकरी नीचे रखता था तो पीठ के ऊपर लाठी किसने मारी है ऐसा निशान देख के। पंडित जी ने बोला बेटा ये तुम्हारे को लाल निशान कैसे हुआ? बोला आने में देर हो गई, पंडित जी ने मारा है। पंडित जी ने बोले पंडित जी ने मारा है, बड़े दयालु कोमल हृदय के, किसी को नहीं मारते हैं, वो दयाशील है, कैसे आप बेटा आप बैठो मैं भोजन बनाती हूँ, पंडित जी आए तो पूछते। पंडित ने रसोई में भोजन बनाने गई, पंडित जी घर में आए, पंडितानी ने दरवाजा खोला, पंडित जी के चौके के ऊपर बिठाया, चौकी दिया, चौकी के ऊपर भोजन दाल पूरी सब्जी रोटी खीर सब हो गया। पंडित जी कहते हैं आज तो भिक्षा मिली नहीं। पंडितानी ये तुम कहाँ से लाई? बोला कहाँ से लाई, मुझसे क्यों पूछते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि उस छोटे बच्चे के ऊपर इतना सामान लादा क्यों और फिर उसने आने में देर हुई तो उसको मारा क्यों? अब तो पंडित जी का माथा घुमा कि मैंने किसी को भेजा? बोला अभी देखो बाहर बच्चा आया था, देखो बाहर आए तो बच्चा नहीं है। पंडित जी सर के ऊपर हाथ मार आंखों से आंसू, बोलता पंडितानी तुम तो भाग्यशाली हो, हम तो पंडित हैं पढ़ पढ़ के पाठ, जन्म हमारा ऐसी व्यर्थ चला गया, आज तुम्हारे घर में भगवान चल के आए और ये कहते ये कहा न कहा ऐसे गए, अपने किताब को देखा और जैसे भागवत को महाभारत को खोलते हैं जहाँ सुबह लाल लकीर लगा के गए थे वहां से लाल लकीर हटी हुई है, वहां शब्द वहां भी वैसे का वैसे पड़ा है। कहा कि भगवान कहते हैं मैं शक किया था, मैं संदेह किया था कि कंधे के ऊपर कैसे उठाते हैं, आज वो अपने कंधे के ऊपर उठा के और अपने शब्द को सत्य किया है। तो भगवत गीता का एक एक शब्द साक्षात भगवान के स्वरूप है, अंग का एक एक मानो जैसे एक एक अक्षर एक एक बाल है, जैसे वो लकीर उसके ऊपर लगाई तो भगवान के श्री विग्रह के ऊपर भगवान के स्वरूप के ऊपर उसका निशान पड़ गया। तो एक एक शब्द इसका साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न, वहामी अहम। बहुत पहले कई साल मैंने 20 साल पहले एक पुस्तक में चित्र के साथ इस श्लोक के दो भाग देखे थे, एक तो गुजरात का नरसिंह मेहता जिसकी नानी बाई का माहेरा माहेरा कि भगवान सांवल सा बन के रुक्मणी को साथ लाकर और उस साधु जो भगवान को जीवन सारा कृष्ण को अर्पण किया उसके मामे की जगह खड़े हो गए भरा था, इसका लिखा था योग कैसे भगवान किसी की कमी को पूरा करते हैं, आके ये किया था। और जिसके पास जो रक्षा है जो है उसकी रक्षा करते हैं, उसमें राम लक्ष्मण ने कैसे तुलसीदास की लिखित कृति की रक्षा की थी जिसको उस वक्त में कुछ लोग डालना चाहते, दोनों की शक्ल थी, रात को चौकीदारी कर रहे थे, चोर अंदर जा नहीं पाया और सुबह जाके तुलसीदास को प्रणाम करता है कि महाराज चौकीदार कहाँ से रखते हो, दिया तो जलाने के लिए तेल नहीं, बोला चौकीदार कहाँ से, बोला सांवला और गोरा लड़कर आई रात धनुष उठा के यहाँ खड़े थे। और तुलसीदास कहता है ये तो राम लक्ष्मण रात को मेरी रक्षा, मेरी दो शब्द राम की महिमा लिखी है उसकी रक्षा कर रहे थे। तो ये दो चित्रों के साथ छपे मैंने पढ़े थे 20 साल, योग क्षेमम का अर्थ कि भगवान जिसके पास जो है उसकी तो सुरक्षा करते हैं और जो नहीं है वो लाके देते हैं स्वयं। तो ये अनन्या चिंतयंतो माम ये जनहा पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। फिर उसको अपने चिंता कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता भगवान अपने आप करता है, भगवान उसकी व्यवस्था कैसे करता है उसको मालूम है। थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल में एक महीना एक पहले इसी योग क्षेमम के ऊपर मैं हॉस्पिटल एम्स में वैसे गया था तो स्टोर इंचार्ज थी, हमसे पूछा कि योग क्षेमम वहाम्यहम् का अर्थ क्या है। उन्होंने पुराने ज़माने में क्या अर्थ था उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप भी तो आपको बताता हूँ कि भगवान कैसे किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मैं कोई 500 साल या 5000 साल पुरानी ध्रुव प्रहलाद की कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से एक महीना पहले 1.5 महीना मुझसे घटी हुई कथा आपको बता रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि भगवान कैसे योग क्षेमम वहम करते हैं। मैं दिल्ली के अंदर एक मंदिर में सत्संग गुड़गांव में कर किया था, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी, बीमार थी, उसको मैं दिखाने लाया था, इस कार्ड में दिखा के दूसरे मंदिर में सत्संग किया, और जयपुर में मुझे उसका कुछ कराना था, एंजियोग्राफी करानी थी, तो मैं गाड़ी में जा रहा था तो ट्रेन में पहुंचा नहीं और ट्रेन मिस हो गई, हालांकि मैं 1.5 घंटा पहले निकला था लेकिन किसी कारण से मिस हो गई, तो मैं दूसरे मंदिर अपने चला गया, और जैसे उस मंदिर में चला गया तो किसने कहा कैसे यहाँ आए, मैंने ऐसे जाना तो जयपुर है, तब तक तो ये जयपुर वाला रास्ता बंद हो गया, ये गुजरों वाला झगड़ा हो गया उस वक्त में, ये मार्च मेरे ख्याल में फरवरी मार्च की बात है अभी ये साल की। तो उधर ही एक भक्त मुझे फ़ोन करता है कि आप इधर ही अगरसन हॉस्पिटल में आपकी ये व्यवस्था हम कर देते हैं, आप मैं आ रहा हूँ कल, और उसका काम स्टंट सप्लाई करना है कई बाहर की कंपनी में, भक्त है कमरा, और आप जाना नहीं मैं साथ चलूँगा। मैं एक दिन वहाँ रहा तो किसी ने मुझे कहा ये जो सुबह मंगल आरती में एक भक्त आता है उसका तो ट्रस्टी है, बड़ा भाई है उसका, पर मैं जानता नहीं हूँ, तो बोला बाप से बात कराता हूँ। मैं फ़ोन किया, मुझे आप हमारे घर आए थे, प्रसाद लिया था आपने, हमको वो सारे के सत्संग दिए थे अपने, मुझे तो मालूम नहीं, वो सुबह आया, वो हमको ले गया, भाई बड़े अपने को ले आया, जाके डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर ने कहा एनजियो अभी करते हैं ग्राफी, हम बातें कर रहे हैं तब तक एनजियोग्राफी करने ले चला गया डॉक्टर, और वो जो ट्रस्टी आया था वो फाइल बनाने चला गया अपने आप, मैं तो उधर ही बैठा हूँ कुछ किया नहीं। तब तो मुझे दिखाया कि ये आर्टरी एक पूरी ब्लॉक है राइट, इसमें स्टंट डालना है, तब कुछ 2,60,000 इतने का लाया, मेरे साइन कराना जो भी है, तो पेशेंट टेबल पे सोया है, हमने साइन कर दिया, साइन करके हम तो बैठे, तब तो वो पेशेंट बाहर आया तो स्टंट वाला बोलता है स्टंट जो इसमें डला है वो हमारी तरफ से है, उसने अपनी तरफ से ऐसे बोला, स्टंट जितने का भी है जो 60-70,000 का आता है हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ, तो डॉक्टर ने बोला ये तो हम डॉक्टर है तो हम अपना इससे कुछ लेंगे नहीं, अपने ऐसे अपने आप बोलते हैं, मैं तो किसी से कुछ बोला नहीं। और तब तक जो ट्रस्टी बैठा है वो फ़ोन करके बोलता है कि इनके पास कोई भी पैसा जमा कराने के लिए नहीं कहना, तो उन्होंने बोला कि भाई इनका कोई इंश्योरेंस है क्या, उसने बोला कृष्णा इंश्योरेंस है, उसने बोला कृष्णा इंश्योरेंस है। अब 3 दिन 2.5 दिन रहे ICU में, और हम बाहर निकल के ऐसे ही आए, और घर आए वो हमने जो बिल लिखा था उन्होंने वहीं पढ़ा है, हमने नहीं दिया नाम से किसी ने मांगा, तो मैं सुन कहा मेरे को दूसरों का तो मालूम नहीं है लेकिन जरूरत किसको कब पड़ती है और भगवान कैसे पूरी करते हैं, और वो ट्रस्टी कहते हैं आज तक हमारे को 25% कम करने का अधिकार है, इतना तो हम कर सकते थे लेकिन ये कैसे हो गया ये हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हो गया। तो ये तो पुरानी बात नहीं, और जिसको मैंने ये कथा बताई और 1 महीने के बाद मेरी ऑपरेशन उसी अस्पताल में होनी, उधर ही मैं हूं, मैं 20 दिन रुका हुआ हूं, मुझे कह रही आपको जो डॉक्टर लिख दें आप लेना मत, आप सिर्फ मेरे को फोन कर लो। और रात को 8 बजे डॉक्टर ने फैसला किया, कल निर्णय किया कि कल सुबह ऑपरेशन होनी और लेप्रोस्कोपिक करनी है, ताकि हम नहीं काटना चाहते हैं ज़्यादा, और इसलिए इंतज़ार भी किया। तो 8 बजे अब तो सब चले गए, ऑफिसें बंद हो गई, तो फोन मैं तो फोन किया उसको, उसका फ़ोन आया, क्या वो लिख के दिया, मैंने बोला अभी कागज़ देके, बोला मैं तो चली गई अभी, क्या लिखा है, मैंने बोला मुझे 3-4 चीज़ें ऐसी लिखी हैं, क्या है तो मुझे मालूम नहीं, जो भी है उनकी है, बोला मेरा आदमी अभी मैं किसी को भेजता हूँ वो ले जाएगा पर्चा, वो 9 बजे मुझसे पर्चा ले गया, 10:30 बजे तक कहीं से व्यवस्था करके और मेरे कमरे में दे के गया, पीछे से मेरे को साइन कराया उसको, मैं देखा बिल 70,000 रुपये का था जो सामान था, मैं तो आश्चर्य तक दो दिन ऑपरेशन हो गई, जो डॉक्टर का तो पैसा वैसे भी नहीं था, जनरली बात कर रहे हैं, हालांकि रहा तो उधर 21 दिन में, तो मैं उसको पूछा ये इसका क्या करना है, बोला योग क्षेम वहाँ हम आपने बोला था, उसने बोला आई अंडरस्टूड कि मैं समझी कि आपने जो उस दिन इसका अर्थ कहा था, तो जिसने वहाँ कहा था उसने मुझे भी कहा कि ऐसे करना, तो ये श्लोक ऐसे नहीं है कि इसमें लिखे हुए हैं 5,000 साल पहले ऐसे था, ये सब आज इस वक्त यहाँ भी वही भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन की रथ को संभाल के उसकी रक्षा कर रहे थे, वो भी आज जो अपना ये शरीर रूपी रथ कृष्ण के हवाले कर दे तो उसका संचालन करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो आज भी ऐसे इस वक्त भी यही कार्य करने को तैयार है। यही भगवद गीता का सार है जो ये चित्र है। इस चित्र में एक रथ है और रथ के पांच घोड़े हैं, चार घोड़े हैं, घोड़ों में लगाम है। रथ के अंदर बैठा हुआ अर्जुन है आत्मा के स्थान पे, और सारथी के स्थान पे बैठा हुआ कृष्ण है। ये शरीर को, हमारे मानव के शरीर को रथ माना जाता है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, आत्मा इसमें यात्री है और बुद्धि सारथी है। जो भी अपनी बुद्धि में कृष्ण को बिठाए और मन रूपी लगाम उसके हाथ में दे दे, तो आज भी वो इस रथ का संचालन करेंगे। यही गीता का सार है, ये गीता का सार जो इस चित्र में है। बुद्धि में कृष्ण को बिठाना है और मन रूपी लगाम उसके हवाले करना। और प्रभुपाद ने इस भगवद गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जो एक बार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र की हर सुविधा को हर आवश्यकता का ठीक तरह से पालन करते हैं। अंग्रेजी में शब्द आप 58 निकालो, उसका भावार्थ में दो लाइनें पढ़ो, मैं उसको जब पढ़ा था उसको अंडरलाइन, कृष्ण बिकम्स इंटीमेट फ्रेंड एंड ही लुक आफ्टर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ हिज फ्रेंड, ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज फ्रेंड, अपने आप को अपने मित्र के हवाले करता है, उसकी हर जरूरत को पूरा करता है। इतना इंटीमेट प्रभुपाद का अपने जीवन का अनुभव उन्होंने लिखा है। वो जब जलदूत में यहां से जा रहे थे, कोचीन से चढ़े थे, जहाज में सामान चढ़ा था, स्वयं कलकत्ता से चढ़े थे, और जहाज के अंदर दो बार हार्ट अटैक हुआ, तब स्वयं उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि मैं तो हताश हो गया, खैर दो बार हार्ट अटैक जहाज के ऊपर होने के बाद कैसे बचूंगा। तब श्री कृष्ण उस जहाज को चलाते हुए उसके कैप्टन के रूप में मुझे कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब इस जहाज के चलाने का भार मेरे ऊपर है। और कैप्टन पांडे लिखता है कि इतने पैसिफिक समंड में, पैसिफिक सागर में मैं कितनी बार गया हूं, लेकिन इतना शांत कभी मेरे को सागर नहीं मिला। उस समय पहली बार इतना शांत ये मुझे प्रशांत सागर मिला है। और प्रभुपाद को जब प्रभुपाद ने कहा ऐसे लिखा, तो उसकी पत्नी पांडे बोले तो फिर वापस भी आप हमारे साथ ही चलिए ताकि सागर हमको शांत मिले, बहुत बड़ा भयानक सागर होता है। लेकिन प्रभुपाद ने अपने जीवन में सामने बोला, उस वक्त कृष्ण ने उस नाव को चलाने का जहाज को भार अपने ऊपर उठा लिया, और उसके बाद मुझे भूख भी लगने लगी, और उसके बाद मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। और तब उन्होंने जाके उधर लिखा है कि भागवत धर्म अमेरिकों के लिए, इतना बड़े ये लोग लोभ मोह में, अंधकार में, तमो रजोगुण में लिप्त हैं, इनको मैं कैसे आपकी बात समझा सकता हूँ, लेकिन आप कृपा करके इनके हृदय में बैठे हुए प्रेरणा देंगे तो ये मेरी बात को समझ सकेंगे। वहाँ भागवत से 4-5 श्लोक उल्लेख किए, प्रभुपाद ने कविता लिखी है।
अध्याय धारा श्लोक संख्या 58 मस्तिके सर्वद्रुगाणि मत प्रसादात् तरिष्यति
अथ
चेतत्वम्
अहंकारं न श्रयोषि
श्रोष्यसि विनक्षसि
न श्रयोषि तो विनक्षसि।
यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से,
ठीक है
बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे,
ठीक है।
लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता।
समझे इसका अर्थ क्या है? भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ व्यक्ति अपने अस्तित्व को चलाने के लिए अधिक उद्वेग नहीं करता है, बस काम चलेगा ठीक है। हाँ। क्यों
लिखा हुआ? जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता।
अब ये कहते हैं कि वो क्यों नहीं करता उद्विग्न अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए क्यों नहीं इतना प्रयास करता है? मतलब वो लोग मूर्ख इस बात को दुनिया वाले समझ नहीं सकते हैं कि वो निश्चिंत क्यों है। उसकी चिंता मुक्त होने का कारण दुनिया नहीं समझती है, क्योंकि
जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं।
वो सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। कितने कितने उनके जीवन के अनुभव के शब्द हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे जरूरत क्या, हमारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं।
और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान की सेवा में लगा है, भगवान अपने आप को उसके हवाले कर देता है। अपना आत्मदान करने का मतलब ये है, ऐसे बोला था सुदामे की पत्नी ने कि लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन हमने सुना है कि कृष्ण अपने आप दे देते हैं कोई मांगने वाले को। मांगने वाले को कुछ देना दूसरी बात है, अपने आप को दे देते हैं। तो यहाँ कृष्ण अपने मित्र को अपने आप को भी दे देते हैं, ये इसका अर्थ है। इसका मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, स्वयं उसकी सेवा में खड़े होते हैं। जैसे अर्जुन की सेवा में खड़े है ना, हर रथ चला रहे हैं अर्जुन का ना, घनिष्ठ मित्र बने हैं कि नहीं है, उसकी हर सुविधा का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं है, उसकी रक्षा कैसे करनी है। घोड़े थक गए हैं तो उनको सहलाते भी हैं, प्यासे हैं तो पानी भी पिलाते हैं। तो ये उसकी सेवा, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। बस इतना इसका यहाँ तक मेरे को कहने का भाव था कि ये जो शब्द हैं, ये जीवन में अगर अनुभव हो जाए और विश्वास हो जाए और दृढ़ संकल्प ये हो कि एक बार भगवान की सेवा में लगने के बाद दुनिया में कभी भी कहीं घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि भगवान ही जिसकी देखभाल करेगा उसको किस चीज़ के लिए चिंता करनी चाहिए। जो अच्छा होगा हमारा, वो हमसे ज़्यादा भगवान जानता है। जैसे छोटे बच्चे का भलाई क्या है, बच्चे से ज़्यादा माँ बाप जानते हैं कि बच्चे को कब खिलाना चाहिए, कब सुलाना चाहिए, क्या पहनाना चाहिए, कब स्नान कराना चाहिए। ये बच्चे को तो पता नहीं, बच्चा तो ये करना नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप उसको ध्यान ज़्यादा रखते हैं। ठीक ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह जो भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, तो भगवान उसकी सब देखभाल करते हैं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, मैं उदाहरण इसलिए दिया प्रैक्टिकल के इस जीवन में ऐसे लाखों भक्तों के साथ, ऐसे एक नहीं हजारों के साथ ऐसा है। हर एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकता है, और कई ऐसे जीवनों में आप पढ़ेंगे और हमने देखे हैं भक्तों के जीवन में ये घटनाएँ होती हैं, तभी भक्तों की भक्ति दृढ़ होती रहती है। तो निश्चित रूप से भगवान आज हैं, अभी हैं, इधर हैं, सिर्फ हमारे विश्वास में अटलता आने से भगवान को पाने में कोई देर नहीं। तो अनन्यास चिंतयन तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। ये जो श्लोक 9वें अध्याय का है, ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा जो है आश्वासन का श्लोक है, श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने का श्लोक है कि भगवान अपने भक्तों के पास जो नहीं है उसको ला के देते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। और इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि वो अपने भक्त को, भगवान अपने भक्त को स्वयं अपने देख रेख में रखते हैं, उसके अच्छाई और बुराई सबको वो स्वयं देखते हैं। तो उसको कुछ अपनी चिंता, जैसे बच्चे की माँ बाप को चिंता होती है, ऐसे भक्त की भगवान स्वयं अपने ऊपर सारा भार ले लेते हैं। इसका अर्थ ये, अब सिर्फ हमारे को योग्य भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की ओपन इन्विटेशन है, भगवान का खुला सबको निमंत्रण है कि मैं आपका भरण पोषण करके आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर उठाने को तैयार हूँ, बस आप अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हो। तो भगवान का तो निमंत्रण खुला है, अब हम अपने आप को भक्त बनाएं, ये हमको प्रयास करना है। और भगवत का भगवद गीता में एक ही आदेश है और एक ही उद्देश्य के भक्त बनो। और नहीं भक्त बन रहे थे लोग, भगवान ने गोलोक में बैठ के देखा कि मैं कह के आया भगवत गीता में मेरे भक्त बनो, भक्त कैसे बनो ये मैं बता के आया, मन मना भव मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यज, तुम्हारे को कोई पाप भी नहीं लगेगा, तुम मेरी सेवा में लग जाओ, लेकिन नहीं लग रहे, मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा मैंने कहा तो है लेकिन मैंने करके नहीं दिखाया। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आए और कैसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए वो करके दिखाई। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का विशेष उद्देश्य ये था कि जो भगवत गीता में मैं लिख के आया हूँ कि मेरे भक्त बनूं, और जो मैं कह के आया हूँ सर्वधर्मान परित्यज, तो ऐसे तो कोई कर नहीं रहा है, तो मैं ही जाके ये करके दिखाऊं उदाहरण के रूप में। जब मैं करूंगा तब लोग करेंगे, तो मैं ही जाके सिखाऊंगा, तो मैं ही सिखाऊंगा तो क्या सिखाओगे, बोला भक्ति देना सिखाऊंगा, मैं लोगों को यह सिखाऊंगा कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो वह कृष्ण ने देखा कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो भक्ति तो मेरे पास नहीं है, कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति तो नहीं है, वो तो भक्तों के पास होती है। तो बड़ी चिंता हुई, कृष्ण को चिंता होने लगी कि अरे मैं जाऊं, मेरी भक्ति मुझे देनी है लोगों को ताकि मेरे भक्त बने, लेकिन मैं कहां से लाऊं, अरे ये तो मुझे भक्तों के पास होती है। अब तो भक्तों को ढूंढने लगे, कौन से भक्त को साथ ले जाऊं जो मेरी भक्ति का जिसके पास एजेंसी हो। अरे मैं जा रहा हूं, पूर्ण भगवान हूं, ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमदच्यते, तो मैं जाऊं तो अपने साथ ऐसा कोई भक्त ले जाऊं जिसके पास भी भक्ति परिपूर्ण हो, 100% हो। तो भगवान ने सब भक्तों को देखा, लेकिन 25, 50, 65, 45, 55, 95 कुछ भी 100% वाला भक्त सिर्फ एक ही दिखाई दिया। तब उसको अपने साथ मिला लिया और वो थी राधा रानी। कृष्ण की भक्ति में निपुणता जिसको पाया है, भक्ति नैपुण्य, वो राधा है। राधिका कृष्ण भक्ति नैपुण्य है, कृष्ण भक्ति की परिकाष्ठा है, महाभाव स्वरूप है। तो कृष्ण ने अपने साथ राधा को मिला लिया, राधा कृष्ण एक हो गए और वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। इसलिए हम भक्ति मांगते हैं हरे कृष्ण मंत्र में, वो भी हरे राधा से मांगते हैं, वो 8 बार आता है, हरे शब्द 8 बार आता है, वो संबोधन राधा को है अथवा भगवान की अंतरंग शक्ति को है, वो सीता भी है, लक्ष्मी भी है, राधा भी है, तो जो भी जिसका इष्ट है उस हिसाब से। लेकिन सभी लक्ष्मियां भी राधा से निकलती हैं, जैसे भगवान के अवतार निकलते हैं भगवान विष्णु से, ऐसे सारी शक्तियां जितनी भी है वो सब राधा से निकल, राधा का विस्तार है। तो तब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने राधा को, श्री कृष्ण और राधा दोनों मिलके गौरंग महाप्रभु चैतन्य राधा का रंग लिया, राधा का भाव लिया, राधा का भाव और अंग कांति स्वीकार किया कृष्ण ने, तो कृष्ण गोरा हो गया और भक्त के भाव से कृष्ण प्रेम को बांटने लगा। तो कृष्ण प्रेम को कृष्ण बांटने के लिए आया, तब राधा कृष्ण दोनों एक रूप में आए। तब चैतन्य महाप्रभु ने गली गली में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बगैर किसी योग्यता के सबको कृष्ण प्रेम सरेआम दिया, जो पहले आज से किसी ने कभी नहीं किया था। चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम, अपना स्वयं का जो धन है भगवान ने बहुत समय से नहीं दिया था। कोई स्वयं का धन क्या है, स्वप्रेम, कृष्ण प्रेम, वो तो अपना धन है। तो कैसे रूप में, नामा अमृतम, नाम के रूप में अमृत, वो पहली बार बहुत समय के बाद एक बार फिर भगवान ने श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग के अंत में आते हैं, 7वें मन्वंतर में। तो एक बार ही आते हैं कृष्ण मनु के, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो अभी जो द्वापर युग गया उसमें कृष्ण आए थे, तो दूसरा ब्रह्मा जी का दिन आएगा, तो अभी 7वां मनु चल रहा है, 7 मनु और आएंगे तब एक दिन पूरा होगा। तो उसके बाद कृष्ण, बाकी तो विष्णु के अवतार बहुत बार आते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण केवल एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कलयुग के आरंभ में आते हैं। तो ये सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है, लेकिन गुप्त रूप से गौरंग महाप्रभु आते हैं। ये इसलिए अभी हमारे को बहुत सरलता से कृष्ण प्रेम, जो बहुत बड़ा मुश्किल से मिलता था, अथवा कई साल गुरुओं के पास जाके घर बार छोड़ के तपस्या करके वेद पाठ करके अपने शब्द, उसके बाद ये ज्ञान मिलता था जिसके लिए भगवद गीता में बहु नाम जन्म नाम, कई जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो सरलता से भगवान के नाम के रूप में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुलभता से सबको पूरे विश्व के अंदर पापी तापी किसी का भी योग्यता अयोग्यता को न देख कर दे दिया है। ये विशेष रूप से मानो के छूट और सेल कलयुग के अंदर 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु के कृपा से है। तो इसका आप स्वयं भी अपना झोली भर लो और अपने आप को परिपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से सराबुर करके फिर इसको बांटो। पहले स्वयं इसको अपनी झोली भरो, फिर दोनों हाथों से ऐसी बांटो और जो ये काम करेगा वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान का मन मना है। जो भगवद्गीता में कहते हैं मेरी शिक्षाओं को श्रद्धालुओं में बांटो, जो ये करेगा वो मुझसे सबसे प्रिय है। तो ये दो काम कर लो, पहले इस प्रेम को स्वयं आप खुद बांटो, पियो मौज से और जब तृप्त हो जाओ तब दूसरों को ये सुख दो। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे
हरे, किसी का कोई जिज्ञासा है? समय अधिक हो गया है, वाणी को यह विराम देते हैं, 50 मिनट का तो सत्संग हो ही गया। किसी का कोई जिज्ञासा है? आप लोग फिर भी आज कल रविवार को भी सत्संग किया, आज मंडे को भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झुंझुनू में आने का ऐसे योग बन रहा था तो हमने बोला बहुत दूर तक नहीं है, और वैसे भी वहाँ से मैं रोड इतना बेकार देखा, वापस जाने की इच्छा भी नहीं थी, तो यही रोड ठीक था तो आपसे मिल के जाऊँ इच्छा हुई, तो फ़ोन किया कल, तो आप लोग आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका।
ये आपने बहुत बड़ी कृपा की, नए भक्तों को आपके